ओम शांति। सभी एक साथ एक स्वर में तीन बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठेंगे। तक की बहुत सारी ट्रेनिंग ली थी तो उस अनुसार हम सब बैठेंगे और अपना पूरा ध्यान स्वरूप पर एकाग्र करते हुए पर में बोलेंगे ओ। सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, परमात्मा की अति प्रिय संतान, प्रिय आत्माएं, अवसर है जबकि हम सब मिलकर बहुत सुंदर विषय के बारे में जानेंगे कि मेडिटेशन करना कैसे है, कि ये राजयोग शिक्षण केंद्र है और यहाँ राजयोग सिखाया जाता है। आपने बहुत बार योग के विषय में सुना भी होगा, प्रैक्टिस भी कर, फिर भी सबकी एक कंप्लेन रहती है, कौन सी? हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान नहीं लगता, ध्यान तो लगता है पर कहीं और जा लगता है, उसमें ध्यान नहीं लगता। Am I right? आप सब इस चीज को फेस कर रहे होंगे। अब ये योग है बहुत ही जो हम सब कर सकें, आज हम उनके बारे में चिंतन करेंगे और प्रैक्टिकल में सीखेंगे। योग और योगा कौन कौन कहते हैं, अलग अलग है? वेरी गुड, आप सब इसके बारे में परिचित हैं। योगा को ही योग समझते हैं और वो वही करते रहते हैं, मतलब फिजिकल योगा को लोग योग समझते हुए करते हैं। वैसे वो करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। अगर आपको योग भी करना है तो योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका तन ठीक है तभी आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा करना, प्राणायाम करना, आसन करना, ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कही है 80% डिजीज आर ओनली ड्यू टू मेंटल टेंशन। तो भी पहले किसे ठीक करना चाहिए? मन को ठीक करना चाहिए। तो ये जो राजयोग है ये मन को, इसे हर, कई बार मुझे लगता है कि मुश्किल लोग इसलिए बना देते हैं, उनको लगता है कि शायद इस योग करनी पड़ेगी, इससे इजी कोई भी योग नहीं है, ये सबसे सहज है, इसलिए इस राजयोग को सहज योग कहते हैं। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी कर सकते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो लेटे हुए भी कर सकता है, जाइए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? योग। इसी योग को कर्म योग भी कहते हैं। आप हाथों से कर्म करते रहिए, मन से ईश्वर हैं। जो कुछ कुछ टाइमिंग सेट है उसमें हम बैठ सकते हैं, अन्यथा पूरा योगी बनकर कर्म करना होता है। तो जब आप हाथों से काम कर रहे हैं, कार्य करते हुए परमात्मा को याद करना, इसको हम कहते हैं कर्म योग है, जो आप ईश्वर की याद में करते हैं। मान लीजिए भोजन बनाते किसी को 2 घंटे टाइम लगे, तो उतनी देर आप परमात्मा को याद करते हुए कर रहे हैं, आपके दोनों काम हो रहे हैं, कर्म भी हो रहा है और योग भी हो रहा है। जब आप घर में भोजन बनाते हैं और जब हम बाबा के घर में करते हैं तो हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, तो वही कर्म जब सेवा भाव होता है तो वो कर्म योग कहलाता है। इसी योग हम ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम समझ के, कोई भी मंत्र जाप नहीं होता, ऐसा नहीं बैठे बैठे कोई शिव बाबा करते रहेंगे, नहीं, बहुत ही आसान, इसको हमें समझ से करना है, किसको याद करना है, कैसे बैठना है, इन सब बातों की जानकारी इसका एक नाम ज्ञान योग भी है। इसको राजयोग क्यों कहते हैं मालूम है आप सबको, जिन्हें पता वो हाथ खड़ा करें। हम इसे राजयोग क्यों कहते हैं जी, और बोलिए खुद के ऊपर भी। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा क्या है राजयोग? हाँ जी, लोगों का राजा बनना, सभी योग राजा, राइट, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बोलिए, और बोलिए। हाँ जी, कौन सी राजाई? सत्य, बहुत सुंदर, सबने बहुत आप दिया, अपने लिए ताली बजाएंगे, थोड़ी अच्छे वाली ताली बजा। ताली बजाने से भी बहुत फायदे होते हैं ना, क्या फायदा होता है वो एक बार तो देखता है कि कुछ तो हुआ ही बजा रहे हैं। और वैसे भी इसमें कोई टैक्स नहीं है, जब आप ताली बजाते हैं खुश होते हैं। तो राजयोग किसे कहते हैं ये समझने वाली बात। सबने योग सीखा, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16। हम सबने, तो यहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसलिए हम इसको योग कहते हैं। और ये सभी योगों का राजा है। दुनिया में योग प्रचलित है, उन सब में से ये श्रेष्ठ है, इसलिए हम इसको राजयोग बन जाते हैं। स्पेशली अपनी मन बुद्धि के हम राजा बन जाते हैं। आप अपने मन को जो आदेश इतनी देर के लिए देंगे, जो देंगे वो वही करेगा। योग में इतनी शक्ति है कि आप अपने मन के राजा बन जाते हैं, आप मालिक बनकर उससे कार्य कराते हैं। इसको हम राजयोग इसलिए भी कहते हैं कि इसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। कितने भी व्यस्त क्यों ना हो फिर भी कर सकते हो। राजयोग का मतलब है कि इसमें एक ऐसे कहां से आए हैं, कहां जाना है, इसको जान करके हम योग करते हैं। कुछ लोग नहीं, बस ध्यान में बिठा दो, बिठा देंगे ना थोड़े टाइम के बाद आप बोर हो जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए ध्यान किस में लगाना है, मैं कौन हूं ध्यान वाला, लगाऊंगा तो मुझे क्या अनुभव होगा, अगर मेरा ध्यान ठीक है तो उसकी निशानी क्या है। इस राजयोग में बस एक मेथड है कि आप अपने को आत्मा समझकर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ये मेडिटेशन है, और इस मेडिटेशन में हम 5 M को मैनेज करना सीखते हैं, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो 5 M कौन से हैं और बिना वो नहीं सकते हैं। मेडिटेशन भी M से शुरू होता है। 5 M में सबसे पहला है माइंड, हमारे मन को एकाग्र करना सिखाता है। दूसरी चीज कौन सी हो सकती है? अब 4 आप सर्च करेंगे, ये मेडिटेशन है। माइंड के ब्रेंड है मूड को मैनेज करना। अक्सर हमारा मूड बदलता रहता है, और कहीं नहीं आता कि अभी इनसे बात करें या ना करें। मेडिटेशन मुख को भी मैनेज करना सिखाता है। कब, कई कहते हैं ऐसे ही बस मुख से निकल गया। Also manners, यह हमें सिखाता। Last but not least वो है money, स्थूल 5 M है। इस 5 M के लिए जो meditation, अभी जो मन है तो उसमें जो मूल कारण है, जो हमारा ध्यान नहीं लगता, भटकता है। जब हम ईश्वर को याद करने लगते, परमात्मा को याद करने लगते हैं तो मन भटकता है। अभी शिकायत को नहीं करता, नहीं था ना, कोई भी बच्चा ये कहता है पापा आपको जब मैं याद करता हूं तो मेरा मन ही नहीं टिकता, उसको चलते फिरते अपनी बात याद रहती है। तो परमात्मा को हम याद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने उनके साथ संबंध नहीं जोड़ा। लेकिन मैं आपके ही मतलब की कुछ बातें शेयर कर रही हूं आपसे। सबसे पहली चीज है परिचय। इतनी बड़ी दुनिया में हम लोग सबको याद नहीं करते हैं, जिनसे हम परिचित हैं, जो हमसे परिचित हैं। प्रोग्राम होता है तो हम अपनी डायरी खोलते हैं कि कोई छूट तो नहीं गया, कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए, तो यह परिचय। और दूसरा है संबंध, जिनसे भी हमारा रिलेशन होता है हम उनको भी याद करते हैं, भले ही वो विदेश में लेकिन हमारा उनसे संबंध है तो याद। और तीसरी चीज, किसी से हमें निस्वार्थ है तो हम उसे भी याद करते हैं। कोई ऐसा नहीं चाहिए लेकिन वो निस्वार्थ स्नेह रखता है तो वहां भी याद स्वतः ही आती है। और चौथी चीज है, जिनसे हमें कुछ होता है, जैसे देखो आप बहुत से लोग हैं कि वो रात भर जागते हैं क्योंकि उन्हें इनकम हो रही है तो स्वतः ही वो जागरूकता में रहते हैं। अब ये याद के सारे आधार हम परमात्मा से जुड़े, जहां तक आजकल बहुत सुंदर तरीके से हमें परमात्मा का परिचय मिला, उनका नाम क्या है सभी बताएंगे, शिव, सदा शिव भी कहते हैं, शिव का सभी बोलेंगे ऐसा है, उनका स्वरूप है अति सूक्ष्म ज्योति। उनके कोई 5 गुण सुनाइए, कोई सुना सकता है, एक बार सुना था, कोई भी नयों में से बताएं 5 गुण कौन से हैं। वैसे तो वो गुणों का सागर है शिव बाबा, किसी को 1-2 भी आते तरीके से हम सबको शिव बाबा का परिचय दिया था। हां जी बताइए, वेरी गुड, ताली बजाएंगे, बहुत सुंदर। सामने ज्योति बिंदु के स्वरूप को देखते हुए सभी एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, ज्ञान शांति के, सुख के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान। वैसे तो वो गुणों के सागर हैं, पर हैं को जब आप प्यार से याद करते हैं तो 1 सेकंड में आप तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, जब हम उनको याद करते हैं तो संकल्प शक्ति से ही याद करना होता है। आप शांत होकर बैठेंगे पर मन से उनके साथ वार्तालाप को सप्रेस करते हैं, डोंट सप्रेस योर माइंड। आपको अपने मन में शुभ चिंतन करना है, उनको एक सही दिशा की ओर लेके जाना है। जब चिंतन और दर्शन दोनों समान होते हैं तो एकाग्रता बहुत अच्छी है कि वो गुणों और उनका जो कर्तव्य है वो है पतित आत्माओं को पावन बनाना। जब हम उनको याद करते हैं तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। मेडिटेशन में क्यों चाहते हैं कि मैं अपने कार्यों को तरीके से करूं, मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़े, तो मेडिटेशन। आजकल हम कार्य तो करते हैं लेकिन मजबूर हैं, खुशी से नहीं करते हैं। जब आप खुशी से कोई काम करते हैं तो उसका मजबूरी से करते हैं तो मजबूरी से किया हुआ कार्य आपको थका देगा, इरिटेट कर देगा, परेशान कर देगा। चाहते हैं कि मैं कार्य को जल्दी करूं, अतरूं, क्वालिटी वाला करूं, मेरी एफिशिएंसी बढ़े, प्रयास करना है। अगर आप चाहते हैं मेरे संबंध सबसे मधुर हो, आजकल संबंधों में भी बहुत अधिक टकराव है, समझ नहीं आता कि किया क्या जाए, बात करो तो बुरा लगता है, नहीं करो तो भी बुरा लगता है, तो मैं तो इन चीजों में उलझी रहती है, टू बी और नॉट टू बी, क्या करूं क्या ना करूं। योग आपके मन क्लैरिटी देता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। कुछ ऐसे जिन्हें आप करने की कोशिश करते हैं पर वो होते ही नहीं, आप उनके लिए 100% अच्छे प्रयास करते हैं लेकिन वो खुश नहीं होते हैं और वो आपके ध्यान में बाधा बनते रहते हैं, बार जिनके साथ बार बार टकराव होता है। Am I right? होता है ऐसा, तो का बहुत कि 95% लोग आप संतुष्ट, इसका मतलब आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। ये 5% ऐसे लोग हैं जो कभी भी इनको छोड़ नहीं देना, नहीं इनको साथ लेके चलना है। इनको आपसे एक चीज की जरूरत है, आपके गुड विशेस। आप केवल उनको दुआएं देते रहो, धीरे धीरे आपका कार्मिक अकाउंट सही, संकल्प चलाते रहे, आन होते रहे, टकराते रहे। ये तो ऐसे ही जैसे पत्थर पहाड़ है, बार बार अपना सिर टकरा रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं, चोट आपको ही पहुंचेगी। केवल आपको समझ के चलता है। बी एन एक्सपर्ट चालक होता है ना, वो अपनी गाड़ी को कभी फास्ट करता है, कभी स्लो करता है, कभी रुक भी जाता है, टकराता नहीं है, तो लाइफ की ड्राइविंग भी बहुत सेफ होनी चाहिए। आपने इन लोगों को छोड़ना नहीं, आपने उन्हें स्वीकार करना है कि ये मेरा 5% है, इनको मुझसे क्या चाहिए, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, गुड विशेष करके देखिए। केवल 21 डेज के लिए आप मन में उनके लिए अच्छा अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा सोचिए, अंदर से ही कहिए कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, वरदानी आत्माएं हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको जिंदगी के बहुत अच्छे चैप्टर पढ़ाए हैं, जो किसी बुक में नहीं लिखे थे। इन्होंने आपकी प्रीत भगवान से बढ़ाई। यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको गॉड से कनेक्ट किया, नहीं तो आप यहां तक पहुंचते नहीं। आप यहां तक तब पहुंचे जब आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई परिस्थितियां आई, तो हमें उनको स्वीकार करना है। सरल शब्दों में, कुछ लोग आपकी जिंदगी में वरदान बन के आए हैं, वो आपको चलते फिरते शाबाश शाबाश बोलते हैं, बहुत अच्छा किया, एप्रिशिएट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग आपकी जिंदगी में वरदान बन के आए हैं और कुछ लोग एग्जाम बन के आए हैं। अब आप उनका क्या करेंगे? जो आपको वरदान देते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छा सोचना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो पूरा ही दिन कह रहे हैं ना, आपने बहुत अच्छा किया, आपको शाबाश बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग आपकी परीक्षा बनकर आए हैं, आपने इनके लिए डबल शुभकामनाएं देनी है। इज इट पॉसिबल? कौन कौन कहते हो सकता है, हाथ ऊपर करो। अभी कुछ सेकंड याद कीजिए उन लोगों को जो आपके मार्ग में बार बार रोड़ा अटकाते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं। आज आप उनको दिल से दुआएं देंगे। कुछ सेकंड के लिए मन ही मन विचार करें, मेरे लिए ये वरदानी आत्मा है, इन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है, इन्होंने मुझे मजबूत बनाया है, मुझे इनर स्ट्रेंथ दी है, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आज से मुझे इनके लिए शुभ सोचना है, ओके। नेत्र खोल लीजिए। मन में कुछ हल्कापन हुआ? आपको जितनी बार मन में याद आए ना, आपने एक चीज सोचनी है, बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना, बस इतना सा सोचना। बहुत अच्छा नहीं सोच सकते ना, क्योंकि रोज रोज कोई तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो कई बार कई लोग कहते हैं हमें अच्छा सोचा ही नहीं जा रहा, अंदर ही अंदर मन में गलत विचार आते हैं उनके लिए। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि इन लोगों को आपने छोड़ नहीं देना, इनको आप क्या देंगे, दुआएं देंगे, मन से दुआएं देंगे। कई क्या करते हैं, एक दिन दो दिन दुआएं दी, कहते कोई असर तो हुआ ही नहीं। एक दो दिन में कोई असर नहीं होगा, लंबे काल तक आप अभ्यास करेंगे। हम सब ने टॉक शो में भी ये बात सुनी थी कि एक पत्थर को आपने 50 बार तोड़ा और आपको लगा टूट ही नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम एक बार तोड़ने से ही वो टूट गया, सुनी थी ना ये बात। तो जो आपकी शुभ भावनाएं हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। एक दीवार को आपने कितनी बार तोड़ने का प्रयास किया, उस दिन नहीं लेकिन वो बाद में टूटी, तो वो पहले वाले आपके पुरुषार्थ का ही फल है ना। तो ऐसी आत्माओं के लिए निरंतर शुभ भावनाएं देनी है, एक दो दिन नहीं, एटलीस्ट 21 डेज आपने ये अच्छी बात सोचनी है। और मेरे साथ साथ बोलिए, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, आप ना इतनी धीरे धीरे बोल रहे हैं कि जैसे अच्छा नहीं है। किस किस को लगता है कि अच्छा है? लगता है? चलिए मेरे साथ बोलिए, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे, बोलिए आगे, बहुत अच्छे हैं। कोई कोई फेस कर रहे हैं ना कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, आप अंदर से सोचिए कि बहुत अच्छे हैं। पड़ोसी, सास, बहू, सभी अच्छे हैं। अंदर से अभ्यास कीजिए, मतलब 21 दिन का ये व्रत है हमारा आज से लेकर के, आज क्या है 8 जून है ना, 8 से लेके 21 दिन समझो जून मास तक, 30 तारीख तक, एक दो दिन एक्स्ट्रा ही समझो हम ये अभ्यास करेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे और उनको शुभ भावनाएं देंगे और अपने जीवन में ऐसे लोगों के प्रति विशेष बैठ करके केवल 3 चीजें उनको एज ए गिफ्ट दे दीजिए, प्यार, सम्मान और दुआएं। दे सकते हैं? प्यार, सम्मान और दुआएं। उनसे लेने की इच्छा मत करना, वो दे या ना दे आपको देनी है, क्योंकि आपको अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है। अब हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम आंखें खोल के करते हैं, कहीं का ध्यान भटकता है शुरू शुरू में, चारों तरफ कहीं आवाज है तो भले कुछ लोग बंद भी कर लेते हैं, लेकिन जो सही मेडिटेशन है वो आंखें खोल के किया जाता है। आंखें खोल के क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब कर्म योगी हैं, सारा दिन हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, भोजन बनाते हुए भी करना है, चलते फिरते भी याद करना है, तो मेडिटेशन हमें खुली आंखों से ही करना है। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो सामने, हमारे सामने ज्योति बिंदु बाबा हैं और नीचे ब्रह्मा बाबा है। क्या आपको दोनों बाबा का परिचय है? एक शिव बाबा है और दूसरे ब्रह्मा बाबा है। कल हमें दोनों बाबा का परिचय मिला था, सुबह वाले सेशन में शिव बाबा का परिचय मिला जो सुप्रीम सोल है, लेकिन उन्होंने जिनके द्वारा ज्ञान दिया वो ब्रह्मा बाबा है। तो जब हम योग करते हैं बाबा की भ्रिकुटी में देख सकते हैं और ज्योति बिंदु बाबा को देख सकते हैं। नेत्रों की एकाग्रता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए आपको अच्छे से अच्छा चिंतन करना है। 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है मनन चिंतन करना, मेडिटेशन में अच्छा सोचना। दूसरी अवस्था होती है परमात्मा से बातें करना, मन ही मन उनसे रूरुहान करना। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, आप खाना खाने लगे तो आप कहते हैं बाबा आप मेरे साथ भोजन स्वीकार करो, ये भी मेडिटेशन है, क्योंकि आप अंदर में किसे याद कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए चलते फिरते ये फील करते हैं कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है तो ये भी उनकी याद है। जब हम योग करते हैं पहली अवस्था है मनन चिंतन, दूसरी है परमात्मा से बातें करना और तीसरी अवस्था है बिंदु बनकर उस बिंदु परमात्मा की शक्तियों को अपने में भर लेना। आसान है? बहुत ही आसान है। चलते फिरते भी हम मेडिटेशन करते हैं, किसी किसी के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, कोई आपको तंग करता है पर आप अच्छा सोच रहे हैं, ये शुभ सोचना भी मेडिटेशन होता है। मन से धन्यवाद करते रहना, शुक्रिया करते रहना, ये भी मेडिटेशन होता है। ये अलग अलग टाइप्स हैं मेडिटेशन के। सबसे पहला मन में शुभ सोचना, इसको हम कहते हैं गुड विशेस मेडिटेशन, जो सब कर सकते हैं। प्रकृति को भी सकाश देना, किसी व्यक्ति को देखते हैं आप, मान लीजिए आपने घर से देखा एक बच्चा चल के साइकिल चला रहा है, कभी वो गिर रहा है कभी वो चढ़ रहा है, आप मन में सोचते हैं ये अपने जीवन में सफल हो, तुरंत आपकी नजर पड़ी कि एक व्यक्ति सब्जी की रेड़ी लेके जा रहा है, सब्जियां बेच रहा है, आप देख रहे हैं केवल पर आप अंदर में सोच रहे हैं कि इसको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, ये जिस विषय के लिए चला है इसको सफलता मिले, अंदर से अच्छा सोचा, ये भी मेडिटेशन है। कोई बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, आप मन में कह रहे हो कि इसको सफलता प्राप्त हो, बेस्ट ऑफ लक। जरूरी नहीं कि हम सबको बोल जाएं, लेकिन अंदर में जो आप सोच रहे हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैलता है। इसको हम कहते हैं गुड विशेस मेडिटेशन। कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपका बॉस आपको बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है, आपकी बजाय दूसरों की बजाय आपसे ज्यादा काम लेता है, आप कुछ मत बोलिए, आप जाने से पहले कुछ सेकंड के लिए मेडिटेशन कीजिए। आप उनके मस्ते हुए कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, परमात्मा का वरदानी हाथ सदा आपके ऊपर है, इनका चित्त शांत रहे। आप देखना चमत्कारिक रिजल्ट होंगे। आपकी अच्छी स्थिति से दूसरों पे प्रभाव पड़ता है। कोई बच्चा कहना नहीं मानता, जितना कहते वो और जिद्दी हो रहा है। आप फेस करते होंगे ऐसी चीजें को। एक बार कहने के बाद रोज रोज मत कहिए, उसके बाद उनके लिए मेडिटेशन करिए। उस बच्चे के लिए मन ही मन सोचिए कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बाबा का वरदानी बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है। बाबा से उनको दृष्टि दिलाइए। फील करेंगे आप कि बच्चा बात मानने लगा। लेकिन ये प्रयोग आपको लगातार करना होगा, एक दो दिन से काम नहीं चलेगा। आपको निरंतर उसके लिए गुड विशेस रखनी है और फील करना है कि बाबा का जो वरद हस्त है वो इस बच्चे के ऊपर है। कोई घर में गेस्ट भी आए, आप दो चार अच्छी बात बताओ कि बच्चा बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है। उसको समझ में आता है कि सब मुझे कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो मानने लगेगा। अक्सर क्या होता है, कोई गेस्ट आता है तो हम उसके सामने कहते हैं बड़ा शरारती है जी, तूफानी है जी, कोई कुछ भी बोल देगा तो बच्चे पता क्या सोचते हैं कि डिक्लेयर तो हो ही गए गलत, अब और ज्यादा करो। क्योंकि हमारे पास तो बच्चों की भी क्लास होती है, बच्चे स्पष्ट बोलते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे को कहा कि बच्चे पहले कैसे होते थे ना, काना जैसे बच्चे होते थे। पता उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा, कहते दीदी तब मां ना यशोदा जैसी थी, अब मेरी मां यशोदा जैसी नहीं है। अब आप सोच के देखिए उनका भी दिमाग चलता है ना। तो गुड विशेस हमेशा आपको फल देंगी, लेकिन वो निरंतर चाहिए और अंतःकरण से चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर और बाहर एक होना चाहिए। ये भी मेडिटेशन है, बी वन। हम मुख से कई बार अच्छी बात बोलते हैं और अंदर में कुछ और सोचते हैं, तो जो आप अंदर से सोच रहे हैं ना वो दूर दूर तक जाता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कितने दिन तक? 21 डेज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है गुड विशेस देने की, ठीक है। और दूसरा है आह्वान योग। आह्वान योग क्या होता है? कोई भी काम आप शुरू करने लगे हैं, बहने रसोई घर में गई और भोजन बनाना शुरू करना है, तो सबसे पहले बहुत प्यार से आपने शिव बाबा को निमंत्रण देना है। बी ऑनेस्ट, कौन कौन करता है? करते नहीं करते? आज से शुरू करके देखिए। जब भी कुछ काम शुरू करने लगते हैं तो आपने बहुत प्यार से परमात्मा को निमंत्रण देना है। जब मेडिटेशन करते हैं तो मन बुद्धि से परम धाम में जाते हैं, लेकिन आह्वान योग में हम उसको नीचे बुलाते हैं और क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। फिर से बोलेंगे, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। अब आप जैसे कहते हैं ना आ जाओ, आपने फील करना है कि वो ज्योति बिंदु परमात्मा अपनी किरणें बिखेरते हुए आ गए। अगर सच में वो आ गए हैं तो आपका कार्य शांति से होगा, प्यार से होगा, खुशी से होगा। अगर ये सब चीजें आपकी हो गई, समझो बाबा आ गए। बाबा के आने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई लाइट सी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। राजयोग में कोई चमत्कार को नमस्कार नहीं है, पर जीवन चमत्कारिक बन जाता है। जैसे बाबा को बुलाया, बाबा आ गए मतलब कार्य करने की शक्ति आ गई। बाबा आ गए मतलब मन आपका शांत हो गया, आपके चित्त में जो परेशानी थी वो ठीक हो गई। शिव बाबा के आने का मतलब है मन खुशियों से भर जाना, ठीक है। कर सकते हैं, आसान है ये वाला योग। पहला कौन सा था? गुड विशेस मेडिटेशन। दूसरा है आह्वान योग, आप खाना खाने से पहले भी बाबा को बुलाएंगे। मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, बहुत बार हम पानी पीते हैं ना, अब कई बार हम हाथ में लेते हैं और फटाफट पी लेते हैं। आप अपने हाथ में लेकर आप 30 सेकंड तक पहले पानी को चार्ज कीजिए, तब आप कैसे बाबा को बुलाएंगे, मेरे बाबा, बोलो, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए फील करना है कि जैसे सूर्य के सामने हम खड़े होते हैं ना, एनर्जी मिलती है, तो शिव बाबा की एनर्जी इस जल में आ रही है, तो ये जल अमृत के समान है। फिर आपने शिव बाबा की याद में लेना है, चाहे जल हो, चाहे फल हो, चाहे भोजन हो, आप पहले उसको चार्ज करेंगे। आह्वान योग से आप जो भी चीज ले रहे हैं, चाहे फ्रूट ले रहे हैं, चाहे पानी ले रहे हैं, वो चार्ज होने से अन्न से ही मन बनता है। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब आप भोजन को चार्ज करते हैं तो प्रसाद बन जाता है। बाबा को याद करके स्वीकार करना, तो उस भोजन के अंदर वो शक्ति भर जाती है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। 21 डेज तक आप सात्विक फूड खाएं, करके देखिए कि आप भोजन परमात्मा की याद में बनाएं, शुद्ध बनाएं, उसमें तामसिक चीजें ना हों। जो सात्विक फूड है उससे आपका मूड अच्छा बनता है। और ये योग बहुत ही आसान है, खाना बनाने से पहले, सोने से पहले, किसी से मिलने से पहले, कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं और बहुत समय से व्यक्ति दे ही नहीं रहा, तो पहले बाबा को बुलाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तीसरा मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन। जो राजयोग है ये हीलिंग मेडिटेशन है। अगर आपका तन स्वस्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका तन स्वस्थ नहीं है तो बहुत बार हम मन में सोचते रहते हैं, क्या करें, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। इतना बीमार नहीं होते जितना यहां सोच सोच के बीमार हो। भयंकर से भयंकर बीमारी में भी आप एक विचार रखिए, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। जब आप रात को सोते हैं तो 21 डेज तक आप अटेंशन देना, आपका लास्ट थॉट कौन सा है और फर्स्ट थॉट कौन सा है। जो ध्यान से सुन रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, हाथ हिलाएं। जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, क्या अच्छा हुआ, उसको याद करते हुए मुस्कुराते हुए सोइए। और जब आप उठेंगे तो मुस्कुराते हुए उठेंगे। जो आज लास्ट थॉट है वो नेक्स्ट डे का फर्स्ट होगा, क्लियर। आज का जो लास्ट थॉट है वो अगले दिन का फर्स्ट थॉट होता है। तो आपने 21 दिन तक अपने विचार के ऊपर नजर रखनी है। बिल्कुल भी ये विचार नहीं लाना कि मैं बीमार हूं। कोई पूछे आप कैसे हैं, क्या हालचाल है, भले स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, फिर भी आप एक बात बोलिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं बहुत आनंद में हूं, बहुत खुश हूं। जब आप सोएं तो ये फील करें कि मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं, आनंदित हूं। ये विचार करते हुए मुस्कुराते हुए सोएं भगवान की गोदी में, तो आपका जो अगला दिन है वो बहुत अच्छे से शुरुआत होगी। जब आप उठेंगे तो मुस्कुराते हुए उठेंगे और बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है हमारे लिए, अपनी बॉडी को हील करना, क्योंकि पूरी रात आपका सबकॉन्शियस सोचता रहता है। आप सो भी जाते हैं लेकिन वो जागता है। आप अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और रोज प्रैक्टिस करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, आज मैं कल से बिल्कुल ठीक हूं, कोई पूछता है तो भी आप यही जवाब देते हैं, तो बेशक स्वास्थ्य ठीक नहीं भी होगा, आप ठीक हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखना, कहने से नहीं, भयंकर से भयंकर बीमारी में मैंने योगियों को मुस्कुराते देखा है। बिल्कुल मतलब कठिन से कठिन जो भी बीमारी है ना, उसमें भी उन्हें मुस्कुराते देखा है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये तो तन का हिसाब किताब है और मैं आत्मा तो संपूर्ण स्वस्थ हूं। और बाबा की जो पवित्र किरणें हैं उसको अपने पूरे शरीर में आता हुआ महसूस करें। अभी हम कुछ सेकंड के लिए करेंगे, नेत्र बंद कर लें बेशक, आसपास की हलचल से बचने के लिए अपनी मस्तक की लाइट को अपने नेत्रों में, अपने चेहरे पर, गर्दन में, भुजाओं में, पूरे शरीर में फैलता देखें। तीन बार विचार क्रिएट करें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। जैसे आप फाउंटेन के नीचे बैठते हैं, अलमाइटी की किरणों के नीचे मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। नेत्र खोल लें, महसूस करें मेरे आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा है। ओके, इसको हम कहते हैं हीलिंग मेडिटेशन। आपको अगर सिर में दर्द है या कोई और शारीरिक व्याधि है तो आप स्पेशल बाबा से पवित्रता की किरणें लें और अपने पूरे शरीर में जाता हुआ देखें। नेक्स्ट है क्षमा योग। कौन सा है? क्षमा योग। जाने अनजाने हमसे भी कुछ गलतियां हुई और अन्य लोगों ने भी की, आपने मन ही मन उनको क्षमा कर देना है और अपनी गलतियों की क्षमा ले लेनी है। शक्तिशाली लोग माफ करते हैं, जो कमजोर लोग हैं वो बदला लेते हैं। और आप अपने को याद दिलाइए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बोलिए, कौन कौन है शक्तिशाली, हाथ ऊपर करो। बोलिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, क्या हम उसको माफ कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि जी हम सब कुछ कर सकते हैं पर माफ नहीं कर सकते हैं, बदला लेके ही छोड़ेंगे। देखिए, बदला लेने का जो विचार है ना, वो आपके मन को बहुत विचलित कर देगा। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स में ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। हम अपने आप को ठीक रखें, हमारी ड्यूटी केवल यही है हम खुद को ठीक रखें, दूसरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब यहां पर सारे खड़े हैं, 50 लोग, सब एक दूसरे को कह रहे हैं लाइन ठीक करो, लाइन ठीक करो, लाइन ठीक हो जाएगी? नहीं ना। एक ठीक खड़ा हो जाए उसको देख के सब अपने आप हो जाएंगे। हमें भी इस तरह से अपने आप को ठीक करना है। जो लोग इस तरह से गलत करते हैं, आप उनको परमात्मा की याद से परमात्म शक्ति दें और उनको क्षमा दान दे दें। कहते जो क्षमा है वो वीरों का आभूषण है। जो कमजोर लोग हैं वो बदला लेते हैं और जो शक्तिशाली लोग हैं वो माफ करते हैं। इसको हम कहते हैं क्षमा योग। एक भाई हमारे पास आए तो उन्होंने कहा, मैं ना सो नहीं पाता, बहुत परेशान रहता हूं, पूरी रात करवटें बदलता हूं। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन में लोग आपसे दुखी होते हो, परेशान होते हो? कहते जी कोई कहां कहना मानता है, फैक्ट्री में जाता हूं, चिल्लाता हूं, अपशब्द बोलता हूं, सारी जो लेबर है वो भी परेशान होती रहती है। मैंने कहा, आप एक बार ना थोड़ा सा चेंज लाइए। जब हम किसी को गलत बोल रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो दूसरों को दुख देके हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। और परमात्मा की याद में ये लोग ज्यादा बाधक बनते हैं, उस समय वो हमारा ध्यान लगने नहीं देंगे। उन्होंने 21 दिन तक मेडिटेशन किया। फिर मैंने उनसे पूछा, कहते अब तो मैं बस एक मिनट में ही सो जाता हूं। अगर हमारी दिनचर्या में हमसे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते और हमारा योग भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो अच्छे योग के लिए क्षमा दान, क्षमा याचना बहुत जरूरी है। क्षमा दान करना, क्षमा याचना, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना और दूसरों को क्षमा दान। अनुभव ये कहता है, हम अपनी गलतियों के लिए तो क्षमा चाहते हैं पर दूसरों को माफ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप माफ कर देंगे और माफी ले लेंगे तो आपका योग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्षमा योग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्रिया योग। जो कुछ मुझे प्रभु ने दिया उसको फील करो, उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है उसकी लिस्ट बनाओ। कई बार हम उसे काउंट नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर कंप्लेन करते रहते हैं, उसको ये मिला, उसको ये मिला, मुझे ये भी नहीं मिला। नहीं, जो मिला है वो कितना अच्छा है, परिवार आपके साथ है कितना अच्छा है, स्वस्थ शरीर आपके पास है। अक्सर मैंने देखा है हम लोग वहां किसी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग क्रिया के प्रोग्राम में भी बहुत बार बुलाते हैं, तो उस क्रिया के प्रोग्राम में ना बहुत बड़ी फोटो रखी होती है, बड़े बड़े टोकरे रखे होते हैं फूल के, है ना, आपने भी देखा होगा। तो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इतनी महिमा करते हैं उस व्यक्ति की, चाहे वो कुछ भी हो, पूरा टाइम महिमा ही महिमा। तो वहां मुझे कई बार ये थॉट आता है कि जब ये व्यक्ति जिंदा था ना, इसको किसी एक ने भी नहीं बोला कि आप अच्छे हो, बेचारा ऐसे ही चला गया। और आज देखो कोई पुष्प लेके आ रहा है, कोई कविताएं सुना रहा है। जीते जी सबकी कदर करो, जाने के बाद उस व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं, कुछ महसूसता ही नहीं। जिस परिवार में आप रहते हैं आप उनके साथ मिलके चलें, एक साथ मिलके मेडिटेशन करें। पहले के समय में कैसे होता था, सब उठते थे एक साथ मेडिटेशन करते थे, आरती करते थे। आजकल तो कुछ रहा ही नहीं। कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि एक भजन बाबा का चले और हम सब मिलकर एक साथ बोले, ये भी मेडिटेशन है। जैसे ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, प्रेम से बस दो घड़ी कर सकते हैं ना। परिवार के साथ मिलकर भोजन किया, फिर एक गीत पे योग किया। ये जो तालमेल है ये बहुत जरूरी है। जीते जी परिवार की कदर करो, अपने से बड़े बुजुर्गों की कदर करो। जो आप करेंगे ना वही लौट के आएगा। जो हम करेंगे बच्चे देखकर सीखते हैं, कहने से नहीं। कल भी ये बात चल रही थी, जो कुछ हम करते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। आपने की होगी एक्सरसाइज, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज इस तरह से कि जो मैं कहूंगी वो आपने करना है। कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, जो मैं कहूंगी वो आपको करना है। जल्दी से सीधा हाथ आगे करो, पैरों को छू लीजिए, घुटनों को छू लीजिए, कंधों को छू लीजिए, गाल को छू लीजिए। देखिए सबके हाथ कहां है, बहुत कम है जिनके हाथ यहां गए। करो ऐसे, अब कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी गलती कैसे हो गई, गलती आपने नहीं करी, मैंने जानबूझ के की, क्योंकि ये बात बताने के लिए कि आप किसी को कितनी अच्छी बात कहिए, जो आप करते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम परिवार को भी अच्छा बनाने के लिए बजाय कहने के खुद करना शुरू करें। माता पिता बच्चों को कहते हैं जल्दी उठो, अगर वो देरी से उठते हैं तो बच्चे जल्दी नहीं उठ सकते हैं। तो मेडिटेशन का एक बहुत सुंदर तरीका है महिमा योग, शिव बाबा की दिल से महिमा करना। और परिवार के साथ आप बैठ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर एक अपनी फैमिली का हेड शिव बाबा को बनाए और उनके दिल से महिमा करें कि मेरे बाबा सुखों के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं। जैसे जैसे आप करेंगे तो बाकी सदस्य भी करेंगे, ठीक है। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे बाबा सुखों के भंडार हैं, मेरे बाबा आनंद के भंडार हैं, मेरे बाबा पवित्रता के भंडार हैं। मैं जो हूं जैसा हूं मैं बाबा का हूं। अब ये सारे योग बहुत आसान है, अब इसके लिए कुछ कुछ टाइम आप सेट कर लीजिए। एक तो उठते ही मेडिटेशन जरूर करना है। आप शुरुआत करेंगे 10 मिनट से, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। कोई कोई तो पूरा हो सकता करते हो 4 से 4:45, बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, उठते ही 10 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करें। जो 4 बजे नहीं भी उठ सकते, देरी से उठते हैं, जितने बजे भी आप उठते हो ना, सबसे पहले 10 मिनट शिव बाबा को देखना है, उनको याद करना है, उनके गुणों का चिंतन करना है। और गहराई से योग को समझने के लिए सेंटर से कनेक्शन जरूर रखना है, क्योंकि इसके जो बाकी लेसन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो बाकी पार्ट है, जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहां एक वातावरण बनता है, बाबा का रूम बहुत अच्छा बना होता है, कोई ना भी मिले वहां बैठ के आप मेडिटेशन करके आओ, सोचो कि मुझे बाबा दृष्टि दे रहे हैं और उनका वरद हस्त मुझ पे है, फील करें कुछ सेकंड के लिए, अभी भी कुछ सेकंड के लिए महसूस करें, आप अपना सीधा हाथ आगे करें और महसूस करें कि बाबा की किरणें इस पे आ रही हैं, अलमाइटी बाबा की शक्तियां मेरे हाथ पर आ रही हैं, ये हाथ वरदानी शक्तिशाली तप के बल से भरपूर है। इसको अपने सिर पर रखें, मेरे साथ साथ बोले, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरे हैं, सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है। फील करें आपके हाथ से बहुत लाइट निकल रही है, कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में बाबा की लाइट को अपने हाथ से पूरे शरीर में फैलता अनुभव करें, महसूस करें, ये दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। ओके, आसान है ना करना, बहुत आसान है ना। आप 5 मिनट भी जाएंगे सेंटर पर, ये वाला योग करेंगे, आपका चित्त शांत हो जाएगा, बोझ से आप मुक्त हो जाएंगे। ट्रस्टी बनकर जीना, ये मेडिटेशन है, प्रैक्टिकल मेडिटेशन। ये मेडिटेशन कोई ऐसा नहीं कि हमने बस सुबह कर लिया, शाम को कर लिया। सुबह शाम हम बैठकर इसलिए करते हैं, कुछ कुछ चीजों के साथ हमने इसलिए सेट किया हुआ है ताकि जब हम बैठे तो हमारा मन एकाग्र हो जाए। मान लो आपने गुड मॉर्निंग की, आज किस किस ने किए गुड मॉर्निंग किए, अच्छा जो कल रात को गुड नाइट करके सोए थे, इसको फिक्स कर लीजिए, करना ही है। खाना खाने से पहले याद करना ही है, सोने से पहले याद करना है, ऑफिस में चेयर पर बैठने से पहले बाबा का आह्वान करना है। क्या कहेंगे, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। कुछ निर्णय करना है तो बाबा से पूछो। योग से अष्ट शक्तियां मिलती हैं, उसकी डिटेल आपको कल मिलेगी। आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप के योग बताए जो आप वहां जाके भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। ये टाइमिंग हम इसलिए सेट करते हैं कि जब हम बैठें तो हमारे मन के अंदर हम इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव कर सकें, मनन चिंतन का, बाबा से रू रूहान का और सर्वशक्तियों का। शिव बाबा से जब हम योग लगाते हैं तो यहाँ रेड लाइट करते हैं, आपने देखा होगा, अभी भी जब हम करेंगे तो रेड लाइट हो जाएगी, गीत भी चलेगा, ट्यून भी होगी और कई बार कॉमेंट्री भी होती है। रेड लाइट हम इसलिए करते हैं, ये एक पहचान है कि अब आपको बोलना नहीं, अपने मन को एकाग्र करना है शिव बाबा में। रेड लाइट इसलिए भी करते हैं, जैसे आपने ट्रैफिक रूल्स में देखा होगा, रेड लाइट होते ही ट्रैफिक रुक जाता है, तो यहां भी व्यर्थ संकल्पों की ट्रैफिक को रोक लेना है और ये चिंतन शुरू करना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसीलिए यहां रेड लाइट की जाती है। नेत्र खुले होते हैं, गीत इसलिए चलता है कि शुरू शुरू में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। कॉमेंट्रीज की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या सोचना है। धीरे धीरे आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपको ना तो रेड लाइट चाहिए, ना कोई म्यूजिक चाहिए और ना ही कोई कॉमेंट्री चाहिए। आप अपने मन से करेंगे, जो मन से हम बातें करते हैं ना, अपने मन की बातें उनको शेयर करते हैं, ये मेडिटेशन है। जो है जैसे हैं अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। मान लो आपका योग नहीं लग रहा पर आप भजन ध्यान से सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। इस योग से हमारे पाप नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध बनती है, जो हमारे संस्कार हैं वो बदलते जाते हैं। जो हमारे कड़े संस्कार है ना, जैसे किसी के अंदर क्रोध का है, किसी के अंदर ईर्ष्या का है, किसी के अंदर आलस्य का है, हर किसी को पता है कि मेरा ये संस्कार अच्छा नहीं है। इस योग के द्वारा ये परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सुबह उठ के आप बाबा को जब याद करते हैं तो शुक्रिया मेडिटेशन करें। इवनिंग के टाइम पर जो 7 से 7:30 का टाइम है उसमें आप दुआओं वाला मेडिटेशन करें, ब्लेसिंग्स मेडिटेशन, गुड विशेस मेडिटेशन। जब आप रात को सोते हैं तो आप क्षमा योग करके सोएं और कार्य से पहले आह्वान योग करके सोएं। हर योग में आपको आनंद आना चाहिए, आपका मन टिकना चाहिए, मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए। श्री बाबा हम सबको ये कहते हैं कि याद के लिए जो बेस्ट टाइम है वो अमृत वेला है, और जैसे सुबह का टाइम होता है ऐसे ही 7 से 7:30 का टाइम होता है। तो आप चाहे तो उसमें करें, 7 से 7:30 वाले में वो भी करना जरूरी है और सुबह वाला भी। अब हम बात कर रहे थे ट्रस्टी बनकर जीना, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको सुना रही हूं, और अक्सर मैंने हर क्लास में शेयर की है कि मेडिटेशन किसको कहते हैं। अक्सर हम जब स्ट्रेस में होते हैं ना, परेशान होते हैं, तो हमें लगता है सब छोड़ छाड़ के चल दो, लेकिन छोड़ के भी आप कहां जाएंगे? कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर आप खाली ऐसे बैठे रहेंगे, वहां बैठ के फिर आपको घर की याद आती रहेगी, है ना, घर में बैठे होंगे तो वहां की याद आती रहेगी। तो रियल मेडिटेशन ये है कि आप अपने को ग्रस्ती नहीं, आप अपने को ट्रस्टी अनुभव करें। जो ग्रस्ती होता है वो बोझे लेके चलता है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। आप में से जिनका अपना मकान है, अपनी कोठी है, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सबके पास अपनी कोठी है। जो शिव बाबा के घर में रहते हैं वो हाथ खड़ा करें। जहां भी हम रहते हैं ना, आज ये अनुभव करेंगे कि वो मेरा नहीं, शिव बाबा का घर है। किसका है? शिव बाबा का घर है। और ग्रस्ती और ट्रस्टी में फर्क होता है। जैसे बैंक में कैशियर के पास कितना कैश होता है, उसको पता है ये मेरा नहीं है। ऐसे ही जब हम ट्रस्टी समझते हैं ना अपने आप को, तो हम अंदर में समझते हैं कि ये जो कुछ मेरे पास है ये सब किसका है? शिव बाबा का है। घर किसका है? मिलके बोलिए, किसके? हम किसके हैं? सुख का सागर कौन, आनंद का सागर कौन है, दुख का सागर कौन है? अब आप भूल गए, दुख का सागर कौन है? रावण। रावण का अर्थ है 5 विकार। ठीक है, एक बार की बात सुनाते हैं, पुरानी बात है लेकिन हम उसे हर रोज एक नया करके जीते हैं। एक बार एक राजा बहुत दुखी होता है, इतना परेशान होता है, वो सोचता है कि सब छोड़ के चल दो। तो वो ये बात अपने गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी मेरे से राजपाट ये सब नहीं संभलता। किस किसने सुनी है कहानी, लेकिन इसको आपने जीना है। मेरा मकसद कहानी रिपीट करना नहीं, लेकिन इसका जो मोरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो राजा जब दुखी होता है तो अपने गुरुजी को बोलता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये छोड़ के जाना चाहता हूं। गुरुजी कहते ठीक है, आपको अगर जाना है तो आप जाओ, अपने बच्चे को गद्दी पे बिठाओ। तो गुरुजी के कहने पर राजा कहते कि वो तो बहुत छोटा है, मैं उसे नहीं बिठा सकता। तो उन्होंने कहा राज दरबार में देखो, तो उनका सेम जवाब था कि मुझे कोई योग्य नहीं लग रहा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं संभाल लेता हूं आपकी गद्दी, आप चले जाओ आपको जहां जाना है। तो राजा को भी आइडिया पसंद आया कि जो मेरी गद्दी है वो कौन संभालेंगे? गुरुजी। अब वो चलने लगते हैं। राजा उठ के राजकोष की तरफ हाथ बढ़ाता है कि कुछ पैसा लेके जाता हूं, तो गुरुजी मना कर देते हैं कि इसमें से आप कुछ नहीं ले सकते। अब थोड़ी देर बीतती है, बैठा रहता है राजा, सोचता रहता है। जब वो 2 घंटे के बाद चलने लगता है तो गुरुजी कहते हैं कि कहां जा रहे हो? कहते कि मैं ना कोई नौकरी करने जा रहा हूं। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा, आप नौकरी करोगे तो आप मेरे पास कर लो नौकरी। तो राजा सोचता है, कहते हाँ ये तो मैं कर सकता हूं। गुरुजी कहते हैं बस आपको ना सुबह 9 बजे बैठना है और 7 बजे मुझे हिसाब दे देना, बस रोज इतना ही काम करना है। अब राजा तो सेवक बन गया, रोज नहा धो के तैयार होके वो गद्दी पे बैठता 9 बजे, 7 बजे वो हिसाब दे देता, रूटीन था 9 बजे आना 7 बजे चले जाना। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, गुरुजी ने कहा सेवक क्या हाल चाल है? कहते हैं बिल्कुल ठीक हूं। कहते एनी स्ट्रेस? नो। टेंशन? नो। कहते अब भी तो आप वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, वही अब कर रहे हो। तो राजा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा गुरुजी जब मैं पहले कर रहा था ना तो मुझे लग रहा था मैं जिम्मेवार हूं, अब तो मुझे पता है मेरा तो कुछ है ही नहीं, फायदा हो या नुकसान हो ये तो गुरुजी का होना है। गुरुजी ने कहा जैसे तुम्हें मुझ में विश्वास है ना, मुझे उस परम सतगुरु में विश्वास है, परम पिता में विश्वास है। वो गुरुओं का भी गुरु सतगुरु है, श्री बाबा परम सतगुरु है। तो जब हम उसको याद करते हैं ना, तो हम ट्रस्टी बनकर जीना सीख जाते हैं। आज से यहां बैठे बैठे ना अपने घर का दृश्य बनाइए और बाबा को अपने घर में लेके जाइए। कौन कौन लेके जाएंगे बाबा को अपने साथ? बाबा इतने अच्छे दोस्त हैं, पिता हैं, शिक्षक हैं, काउंसलर हैं। कुछ भी उलझन होती है ना, आपने पहले बाबा तक पहुंचना है, ऐसे नहीं कि लास्ट में। तो बाबा आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। यहां पर बैठे बैठे हम बाबा को अपने घर लेके जाएंगे और अपने घर पर बड़े अक्षरों में लिख देंगे शिव बाबा का घर। क्या लिखेंगे? शिव बाबा के घर। हम सब कहां रहते हैं? शिव बाबा के घर में। बदल गया ना, अब हमारा घर नहीं, किसका घर है? शिव बाबा का घर। परिवार किसका है? शिव बाबा का। कुछ सेकंड के लिए अभी हम बाबा को अपने साथ लेके चलेंगे और ये फील करेंगे, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं ट्रस्टी हूं, सब कुछ तेरा। तेरा तेरा करते हम तर जाते हैं, मेरा मेरा करते मन मैला हो जाता है। एक बात कहते हुए मैं 3 मिनट का अभ्यास कराऊंगी आपसे, फिर उसके बाद हम कुछ विजन देखेंगे कि योग में क्या क्या हम विजन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, नेत्र खुले हों, सामने ज्योति बिंदु की ओर देखिए, देखते रहिए, कोशिश कीजिए इस बिंदु को देखते कोई विचार ना आए। दस सेकंड आपके पास है, इस तार को देखते रहिए, कोशिश कीजिए इसे देखते हुए कोई विचार ना आए। ओके, जिनके मन में कोई विचार नहीं आया हाथ खड़ा करें। ध्यान से समझिए, आपके मन में यह विचार आ रहा था कि कोई विचार ना आए, यस, ये भी एक विचार है। आपने अपने मन को खाली नहीं करना, दबाना नहीं है, अपने विचारों को एक सही दिशा देनी है। ठीक है, विचार करना अच्छी बात है, विचार करना बुरी बात नहीं है, इंसान है तो सोच सकता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मन को अमन करना है, दमन करना है, नहीं, आपने इस मन को सुमन करना है, सोचना है, अच्छा सोचना है। कोई विचार ना आए ये भी एक विचार है। ठीक है, फिर से अलर्ट हो जाइए, सामने ज्योति स्वरूप शिव बाबा को देखिए, अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखिए। कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान यहां केंद्रित करें जहां तिलक लगाते हैं, चिंतन करें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मस्तक में विराजमान हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बहुत प्यार से बाबा को कहिए अब आप हमारे लौकिक सेवा स्थान पर चले। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, उनका हाथ पकड़कर लौकिक सेवा स्थान पर चले। बहुत सुंदर तरीके से बाबा का वेलकम करें, पूरे घर का चक्र लगवाएं, बाबा के चक्र लगाने से पूरा घर रोशनी से भर गया है, सारा परिवार बाबा के सामने है, बाबा सारे परिवार को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, ये हैप्पी फैमिली है, सदा हैप्पी रहना है। अपनी चिंताएं, बोझ सब बाबा को दे दें, बहुत प्यार से कह दें, मीठे बाबा, ये घर आपका है, परिवार आपका है, मैं भी आपका हूं। सभी अपना सीधा हाथ अपने दिल पर रखेंगे, महसूस करेंगे कि बाबा को अपने दिल में बिठाया है। प्यार से कह दीजिए, मीठे बाबा, मुख से बोलेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, अंग संग रहने के लिए शुक्रिया, मार्ग प्रदर्शना देने के लिए शुक्रिया। हम जो हैं, जैसे हैं, आपके हैं, आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, आपकी छत्र छाया में सदा आनंदित रहेंगे। शुक्रिया। अभी हम खड़े होकर शुक्रिया करेंगे, जो भजन चलेगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे।
शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
शांति से बैठ जाएंगे। ये विजुअल सिर्फ एक एक मिनट के रहते हैं, अभी दिखाएं या बाद में? सिर्फ एक दो विजन है मेरे ख्याल से, शायद साथ साथ दिखाए भी होंगे। जब आत्मा के सात गुण कहते हैं तो आपने ये वाला विजन अपने सामने लाना है। सब ध्यान से देख लेंगे, आत्मा यहां पर है, सातों गुणों का प्रकाश पूरे शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। इसको हम कहते हैं आत्मा के सात गुणों का अनुभव करना। दूसरा है शिव बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होना। सामने ज्योतिबिंदु बाबा को देखेंगे, उनसे निकलता प्रकाश, 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे बाबा पर, महसूस करेंगे कि उनका प्रकाश मुझे शक्ति दे रहा है। अभी परम धाम की यात्रा करेंगे, परम धाम का दृश्य देखेंगे, कैसे मस्तक से ज्योतिबिंदु आत्मा निकलकर साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम में जा रही है। बाबा से मिलन मनाकर शक्ति आपने भी भर ले। फाउंटेन की तरह उस महाज्योति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे बाबा का वरद हस्त, इस योगी की जगह अपने आप को बैठा हुआ देखेंगे। 5 सेकंड के लिए फील करें, अलमाइटी का हाथ मेरे सिर पर है। विजन की तरह कमल आसन पर अपने आप को बैठा देखें। देवी देवताओं को कमल आसन पे दिखाते हैं। आप स्वयं को राजयोगी की मुद्रा में देखें। मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं सहज योगी हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं निरंतर योगी हूं। ये विचार आपको सहज योगी बनाएगा, कर्म योगी बनाएगा। आप सब सहज योगी बने, कर्म योगी बने, और जब याद करें बाबा को तो ये याद रखिए, ये सच्ची कमाई जमा हो रही है, अविनाशी कमाई जमा हो रही है। मैं शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं, सहज योगी हूं। आप सभी सहज योगी बने और सदा खुश रहें, ट्रस्टी बनकर जिए, ये मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। ओम शांति।